यशाया अध्याय 24। अध्याय 24 में हम उन घटनाओं को देखेंगे जो पृथ्वी पर शीघ्र ही होने वाली है, जब परमेश्वर मसीह यीशु के फिर से आने के लिए महाक्लेश के युग में पृथ्वी को तैयार करेगा और पृथ्वी का शोधन करेगा। यशाया अध्याय 24 पद 1। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वो उसको उल्टाकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुवों की धुरी झटका खाएगी, वो इसे घुमाकर उल्टा कर देगा। कुछ वैज्ञानिक है जो ध्रुवों की धुरी में परिवर्तन की बात कहते हैं, परंतु कच्चे लोहे के कणों के अध्ययन धनात्मक ध्रुवों का यथोचित स्थिति में नहीं होने से ये तथ्य सिद्ध होता है कि चुंबकीय ध्रुव पहले उस अवस्था में नहीं थे जो अवस्था उनकी आज है। इसका अर्थ यही हो सकता है कि ध्रुवों में कुछ परिवर्तन अवश्य आया है। इस विषय में जानकारी हेतु वैज्ञानिकों के अध्ययन पत्रिकाओं में छापे जाते हैं और आप उनको पढ़कर समय के साथ आए परिवर्तनों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्ल्ड्स इन कोलिजन में इमैनुअल वेल्कोवेस्की का मुख्य विषय है कि शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल में उस समय आया जब इतिहास का लिखा जाना आरंभ हो गया था। वो एक पुच्छल तारा था जो पृथ्वी के निकट से उस समय निकला जब परमेश्वर मिस्र पर विपत्तियां डाल रहा था, और वो उन विपत्तियों में से अनेक को शुक्र के प्रवेश संबंधित बताता है। वहां जिस आग के खंभे का उल्लेख है वो लेखक के अनुसार शुक्र ही था। उस समय तो वो चला गया था, परंतु उसका फिर से आना उस समय हुआ कि जब यहोशू के युग में पृथ्वी रुक गई थी और दिन लंबा रहा था। वो पृथ्वी के इतना पास आ गया था, शुक्र और पृथ्वी के मध्य एक विशाल विद्युत चिंगारी उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण पृथ्वी रुक गई, और जब पृथ्वी ने फिर घूमना आरंभ किया तब वो विपरीत दिशा में घूमने लगी। पहले वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती थी। उसने बाबुल के खगोल शास्त्रों से कुछ ऐसे विवरण खोजे हैं जिनमें शुक्र ग्रह का कहीं उल्लेख नहीं है। शुक्र आज भी सबसे चमकीला ग्रह है। ये बड़ी रुचिकर पुस्तक है। वैज्ञानिक क्षेत्र में इस पुस्तक ने धूम मचा रखी है। यदि आपको रोचक विषयों को पढ़ने में रुचि है तो ये एक अच्छी पुस्तक है। अनेक लोग उसके विचारों को स्वीकार करने लगे हैं जो उनसे वर्ल्ड्स इन कोलिजन में प्रस्तुत किए हैं। उसकी अन्य पुस्तकें हैं एजेस इन खयास, प्रलय में युग, और हाल ही में प्रकाशित अर्थ्स इन अपहीवल, पृथ्वी उतल पुतल। उसका मुख्य विषय है कि शुक्र ग्रह और मंडल में बंद गया और ये सब इतिहास के युग में ही हुआ है। मुझे तो ये पुस्तक इसलिए पसंद है क्योंकि वो सिद्ध करता है कि यहोशू के समय सूरज रुक गया था। जहां रात थी वहां रात रुकी रही। इस बात को सिद्ध करने के लिए उसे अमेरिका महाद्वीप में पेरू के आदिवासियों के शास्त्रों में से लंबी रात का विवरण मिला है कि वहां भी एक ऐसी रात थी जो बहुत लंबी रही। कहीं शाम बहुत लंबी रही, कहीं दोपहर बहुत लंबा रहा। वो इस घटना को इतिहास तथा प्राचीन मनुष्य से संबंधित दर्शाता है। वो पुष्टि करता है कि उस दिन सूरज निश्चय ही रुक गया था। संसार के दूसरे लोग नहीं जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, परंतु यहोशु और उसकी प्रजा अवश्य जानेंगे कि सूरज क्यों रुक गया था। दुश्मन का नाश करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें ये अवसर दिया था। वो दिन का जो भी समय था, लिखा है, परमेश्वर ने उनके दुश्मनों पर चट्टाने बरसाना आरंभ कर दी थी। चट्टानों से अधिकांश जनों की मृत्यु हुई थी। लेखक के विचार में ये पुचल तारे शुक्र की पूंछ का मलबा था। मनुष्य को ये समझाना कठिन है कि इस पुचल तारे का मलबा यहोशु के दुश्मनों पर ही क्यों बरसा, यहोशु के लोगों पर क्यों नहीं, क्योंकि मनुष्य केवल प्रकृति के दृष्टिकोण से ही देखता है और समझता है। मुझे ये पुस्तक अच्छी लगी क्योंकि इसमें अपूर्व विचार प्रस्तुत किए गए हैं। मुझे अपूर्व विचार पढ़ने में आनंद प्राप्त होता है। वो उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। वेल्कोवेस्की का मानना है कि उस युग में ध्रुव परिवर्तन भी हुआ था और ऐसा फिर से होगा। यशाया अध्याय 24 पद 2 और 3। और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसा स्वामी की, जैसी दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसी बेचने वाले की, जैसी उद्धार देने वाले की वैसी उद्धार लेने वाले की, जैसी ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की। सबों की एक ही दशा होगी, पृथ्वी शून्य। दूसरे शब्दों में ये समय सब पर आएगा, कोई नहीं बचेगा, अमीर गरीब सब पर आएगा, पृथ्वी शून्य। यशाया अध्याय 24 पद 3। और सत्यनाश हो जाएगी क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है। ये महाक्लेश के युग में होगा, तब मनुष्य युद्ध के कारण ही नहीं, परमेश्वर द्वारा भेजे जाने वाले महाप्रलय से भी नाश किया जाएगा। पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगी, वो समय यहां रहने का नहीं होगा। यशाया अध्याय 24 पद 4 से लेकर 6 तक। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। महाक्लेश के युग में बहुत ही कम लोग बच पाएंगे, बहुत कम होंगे जो पार लगेंगे। यशाया अध्याय 24 पद 7 से लेकर 17 तक। नया दाखमधु जाता रहेगा, दाखलता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस लेंगे। डफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा, वे गाकर फिर दाखमधु न पिएंगे, पीने वालों को मदिरा कड़वी लगेगी। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नाश होगी, उसका हरेक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई पैठ ना सकेगा। सड़कों में लोग दाखमधु के लिए चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा, नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नाश किए जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा जैसा कि जलपाइयों के झड़ने के समय वो दाख तोड़ने के बाद कोई कोई फल रह जाते हैं। वे लोग गला खोलकर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महात्मय को देखकर समुद्र से ललकारेंगे। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीपों में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुण अनुवाद करो। पृथ्वी की छोर से हमें ऐसे गीत की ध्वनि सुन पड़ती है कि धर्मी की महिमा और बड़ाई हो। परंतु मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हो गया नाश, क्योंकि विश्वासघाती विश्वासघात करते, वे बड़ा ही विश्वासघात करते हैं। हे पृथ्वी के रहने वालों, तुम्हारे लिए भय और गड्ढा और फंदा है, भय और गड्ढा और फंदा है। हमें स्पष्ट किया गया है कि क्रिस्त विरोधी वो पशु जिसे तूने देखा वो था, परंतु अब नहीं रहा। वो गड्ढे से निकलेगा, अर्थात अधोलोक से। ये क्रिस्त विरोधी के राज्य के विषय चर्चा की जा रही है कि वो निरंकुश शासन और भय का युग होगा, और यीशु क्लेश के युग को फंदा कहता है। यीशु ने कहा था कि तुम पेटूपन और पियकड़पन और संसार की चिंताओं से सावधान रहना, क्योंकि ये पृथ्वी वासियों के लिए फंदा होगी। ये होगा महाक्लेश का युग। यशाया अध्याय 24 पद 18। जो कोई भय के शब्द से भागे वो गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वो फंदे में फंसेगा, क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नेव डोल उठेगी। ये समय पृथ्वी के लिए महाप्रलय का समय होगा। भगदड़ मच जाएगी। 1906 में सैन फ्रांसिस्को में भूकंप आया था। सैन फ्रांसिस्को उस समय ध्वस्त हो गया था जिसकी वर्षी मनाई जाती है। उस युग में रिक्टर पैमाना तो था नहीं, परंतु ये माना जाता है कि भूकंप की तीव्रता 8.3 अंश पर थी, और अधिकाधिक सुनने को मिलता है कि उसकी तीव्रता पर अति शीघ्र ही दूसरा भूकंप आने वाला है। वैज्ञानिकों ने ये कह दिया है एक और भूकंप आने की संभावना है। उसका समय लगभग आ ही गया है। वो शीघ्र ही आने वाला है जो उसी तीव्रता पर होगा। यदि एक भूकंप 8.3 की तीव्रता पर आए तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहां जाऊं। सड़क पर तो नहीं, क्योंकि सब गाड़ियां भूकंप से पलट जाएंगी। कुछ वर्ष पूर्व सिल्मर का भूकंप 6.5 तीव्रता पर रहा था, और उसने सड़कें नाश कर दी थी। प्रत्येक अंश 10 गुना अधिक होता है, तो यदि 8.3 तीव्रता पर भूकंप आएगा तो संपूर्ण विनाश हो जाएगा। परमेश्वर कहता है, मैं पृथ्वी की नेव हिला दूंगा। ये कोई एक स्थान का भूकंप नहीं होगा, पूरी पृथ्वी हिलाई जाएगी। अब तक के भूकंपों का विनाश तो हम देख चुके हैं। जब परमेश्वर पृथ्वी की नेव को हिलाएगा तब क्या होगा? परमेश्वर ने एक बार और कहा था कि वो पृथ्वी की नेव को हिला देगा। वो नूह का युग था, और ये सच है कि जल प्रलय के समय पृथ्वी का कप कपाना विनाश का एक भाग था। यशाया अध्याय 24 पद 18 से लेकर 20 तक। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। वो मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी और मचान की नाई डोलेगी। वो अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर ना उठेगी। तो परमेश्वर पृथ्वी को हिला देगा। वो मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी और मचान की नाई ढोलेगी। वे वैज्ञानिक जो ध्रुव परिवर्तन के बारे में कहते हैं, उनका मानना है कि ऐसा होते समय पृथ्वी डगमगाएगी जैसा कि आप देखते हैं बच्चों के खेलने का लट्टू घूमना बंद करते समय कैसे डगमगाता है, ठीक उस प्रकार पृथ्वी का घूमना भी बंद होगा। वो डगमगाएगी और फिर ध्रुव परिवर्तन होगा। बड़ी ही रोचक बात है कि वैज्ञानिक पृथ्वी के डगमगाने का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने पाया कि वो प्रति 7 वर्ष चक्कर लगाती है। वो अपनी चरम सीमा पर आकर एक प्रकार से सीधी होती है, तब रफ्तार बढ़ती चली जाती है, परंतु उसका डगमगाना बढ़ता ही जा रहा है। यशाया तो पृथ्वी के डगमगाने और ध्रुव परिवर्तन के विषय में कुछ नहीं जानता था, परंतु फिर भी उसने वर्षों पूर्व विज्ञान की ये जानकारी दे दी। वो कहता है कि पृथ्वी मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी और अपने स्थान से उखड़ जाएगी। इससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि पृथ्वी पर महान प्रलयकारी परिवर्तन आएंगे। यशाया अध्याय 24 पद 21। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर दंड देगा। वो किसके बारे में कह रहा है? आकाश की सेना, पति दूतों का न्याय। जिस दिन यीशु आएगा वो आकाश की सेना को दंड देगा। जब यीशु आएगा तब वो क्रिस्त विरोधी को और झूठे भविष्यद्वक्ता को अधोलोक में डालेगा। शैतान को एक विशाल जंजीर से बांधकर वो उसे और उसके अनुयायियों को अधोलोक में डालेगा। ये वे आत्माएं हैं जिसके विषय पौलुस ने इफिसियों में लिखा है, इफिसियों अध्याय 6 पद 12। हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए यशाया अध्याय 24 पद 21, यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर दंड देगा। आत्माओं को 2 गुना न्याय, शैतानी शक्तियां और दुष्ट जन, वो न्याय का दिन और क्रोध का दिन होगा। यशाया अध्याय 24 पद 22, वे बंधुओं की नाई गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे। ध्यान दीजिए कि दुष्टात्मा ने यीशु से क्या कहा था, हमें समय से पूर्व गड्ढे में मत डाल। वे जानती थी कि उन्हें एक दिन शैतान के साथ गड्ढे में डाला जाएगा, इसलिए वे याचना कर रही थी कि उन्हें इस समय गड्ढे में ना डाला जाए। शैतान को भी एक बहुत बड़ी जंजीर से बांधकर गड्ढे में डाला जाएगा। उन्हें बंदियों के सदृश पकड़ा जाएगा और गड्ढे में डाला जाएगा। यशाया अध्याय 24 पद 22, और बंदी गृह में बंद किए जाएंगे और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। 1000 वर्ष के बाद शैतान कुछ समय के लिए मुक्त किया जाएगा। उसके बाद वह और उसके अनुयायी गहन्ना नरक में, जो आकाश गंगा से दूर है, एक ऐसे अंधेरे स्थान में डाल दिया जाएगा जहां पर आकाश गंगा की ज्योति नहीं पहुंच पाएगी। वहां केवल रोना और विलाप करना होगा। यशाया अध्याय 24 पद 23, तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा की पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा।